का लेसन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या इसके पीछे हालात थे जिसमें ये आयात नाजिल हुई, क्योंकि अब यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। और इस टॉपिक में जो बुनियादी तौर पे तबूक के बारे में है, आप बहुत सारी मुनाफिकीन की बातें सुनेंगे। तबूक तकरीबन 9 हिजरी में हुआ, शव्वाल के महीने में। उसको गजवा तो कहा जाता है मगर उसमें लड़ाई नहीं हुई। जैसे कि आप सब जानते हैं, सुलह हुदैबिया जब हुई थी 6 हिजरी में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद डिफरेंट जगहों पे खतूत लिखे मुख्तलिफ बादशाहों को। और इसी ज़माने में मुसलमानों की ग्रुप्स को भेजा गया, यानी दावत का काम करने के लिए। इनमें एक ग्रुप जो था वो निकला, तकरीबन 15 लोग थे, और वो ग्रुप जब रूमी सल्तनत के अंडर जो इलाका था वहाँ गया और उनको इस्लाम की दावत दी, तो उन लोगों ने उन पर तीर बरसाने शुरू कर दिए और उनको शहीद कर दिया। सिर्फ एक सहाबी बच के वापस आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा सुनाया। इसके अलावा यानी ये उन्होंने कितनी बड़ी एक बहुत बड़ी एक जुर्रत की थी, इसलिए क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर किसी दूसरी जगह के बाशिंदे जा रहे हैं और वो सरकारी तौर पे वहाँ पे आए हैं, तो उनको मारना ऐसे ही है जैसे कि उस हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खतूत भेजे थे, दूसरा वाक्या ये हुआ कि उन खतूत को लेकर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इलाकों में सहाबा गए। तो एक सहाबी हज़रत हारिस बिन अमर, वो कासिद बना के, यानी समझ लें सफीर या अम्बेसडर इस तरह से समझें, उनको गस्सान की तरफ भेजा गया। ये भी रोम के अंडर आता था और उस वक्त दो ही सुपर पावर्स थी, एक किसरा और एक रोम। किसरा के बादशाहों को कैसर कहा जाता था, तो यानी ये उसका एक लकब होता था कैसर, जैसे कि फारिस के हुक्मरानों को किसरा कहा जाता था। हम पढ़ते हैं या हम बोलते हैं ना कैसरो किसरा, तो वो इस वजह से, ये बड़ी बड़ी दो पावर्स थी उस जमाने की। तो इस इलाके पर जो गसानी इलाका था ये आता था रूमियों के अंडर। यहाँ पर जो हुक्मरान था उसका नाम शराहबील था, जिसको हम उर्दू में अक्सर शर्जील पढ़ लेते हैं। ये नाम शर्जील नहीं होता, इसी तरह एक सहाबी का भी नाम है शराहबील है, कि हम नुक्ते इधर उधर कर देते हैं। तो वो खत लेकर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जब वहाँ के हुक्मरान को दिया तो उसने इनको शहीद करा दिया। अब पूरी दुनिया में और हर दौर में जो सफीर होता है उसकी प्रोटेक्शन की जाती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको तहफ्फुज़ दिया जाता है। उसका इनको शहीद करना ये था कि जैसे कि इस्लामी मुमलिकत के खिलाफ उसने भी जंग का ऐलान किया है। तो ये दो वाकयात हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको ये मैं जो वाकयात बता रही हूँ ये सुलह हुदैबिया के बाद की है, ठीक है। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहिम रवाना की। खुद तो नहीं गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें, लेकिन सहाबा को रवाना किया था। और एक बड़ी खौफनाक जंग हुई थी जिसका नाम था जंगे मौता। चूंकि रूमी जो थे वो बहुत पावरफुल थे और ये इलाका भी रूमियों के अंडर आता था, तो छोटी मोटी जंग में भी वो बड़ी बड़ी फौजें डिप्लॉय कर देते थे। तो 1 लाख तो उनकी अपनी थी, 1 लाख पीछे से आ गए, 2 लाख थे और मुसलमान 3,000 थे सिर्फ। इस जंग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे जैद बिन हारिसा को सिपा सालार बनाया था और फिर फरमाया था कि अगर ये शहीद हो गए तो फिर हजरत जाफर बिन अबी तालिब ये सिपा सालार होंगे, वो शहीद हो जाएंगे तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा। और ये इतना ही खौफनाक जंग थी कि तीनों ही शहीद हो गए और चौथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुकर्रर नहीं किया था, मगर किसी को तो कमांड करनी थी ना। तो उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद जो सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार, उन्होंने फिर कमांड ली और ऐसी जंग लड़ी कि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि सब शहीद हो जाएंगे, मगर वो किसी सूरत में इनको निकाल के वहां से लाने में कामयाब हो गए मुसलमानों को। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मुसलमान जो है वो जंग के मैदान से भाग नहीं सकते, तो ये जरूरी था कि अब इसके बाद, हाँ सिर्फ एक दो सूरतें थी ना जो हमने पढ़ी थी पिछली सूरा में, सूरा अनफाल में, कि किस सूरत में आप पीछे पलट सकते हैं, और उनमें एक ये थी कि जब पैंतरा बदल के दोबारा आना, जब पीछे आप जा रहे हैं कोई मदद लेने के लिए और दोबारा हमला करना। तो उनके नरवे से निकाल तो लिया उन्होंने मुसलमानों को, लेकिन अब एक बड़ी फौज के साथ आना जरूरी था। इसके अलावा भी ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, ये मैं आपको सारी बैकग्राउंड बता रही हूँ कि क्यों ये जंग हुई थी। ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला पहुंची 9 हिजरी में कि रूमियों ने अपने दस्ते, अपनी फौज सरहद पे लाके जमा करनी शुरू कर दी है, और इसका क्या मतलब है, ट्रबल, कि अब वो लोग हमला करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी शुरू की, क्योंकि पता चला था कि वो जमा कर रहे हैं फौजों को और 1 साल की उनको तनख्वाहें भी पहले से दे दी हैं, और बाज अरब के कबाइल के साथ भी वो साज बाज कर रहे हैं। असल में कैसरे रूम को इस चीज का खदशा हुआ कि पहले तो वो अरबों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते थे, उनके नजदीक ये कोई चीज नहीं थी, लेकिन अब तो ये एक पावर बन के खड़े हो रहे हैं। उसको खतरा हुआ कि ये मेरे लिए, मेरी बादशाहत के लिए कोई मसला ना क्रिएट करें, उनने कहा पहले ही इनको खत्म करो। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला ना, तो आपने ये इरादा फरमाया कि उनके आने से पहले हम वहां पहुंच जाएं। अब टाइमिंग जो इसका था ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना, इसलिए कि बहुत सारी वजूहात, जो जो बहुत सारी चीज़ें हुई, हालात हुए, उनमें एक वजह ये टाइमिंग भी थी। वो कैसे कि टाइमिंग वो थी कि जब सख्त गर्मी का ज़माना था, शदीद गर्मी, और नंबर 2 मदीना के जो लोग थे वो ज्यादातर तो ये खेती बाड़ी करने वाले, बागात में काम करने वाले, ज़राअत पेशा थे यानी, और ये वो वक्त था जब बागात का फल पक चुका था, जिसपे उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट की होती है, सारा साल मेहनत की होती है। और आपको पता है ना कि जैसे जॉब करने वालों की महीने के एंड में जेब खाली होने शुरू हो जाती है, इसी तरह जो ज़राअत पेशा लोग होते हैं, जब एक सीजन खत्म होने वाला है तो उनके भी हाथ खाली होने शुरू हो जाते हैं, अब नेक्स्ट फसल को वो देख रहे होते हैं, तो यानी तंगी भी थी एक तरह। अब तो मौसम की शिद्दत भी है और फिर फसलें भी तैयार खड़ी नहीं है, ऐसा टाइम था कि जिसमें वो हरगिज नहीं चाहते थे कि वो निकले, जो जिनके ईमान कमजोर थे या जिनके अंदर मुनाफत थी, वो कैसे ऐसे वक्त के अंदर निकल खड़े हों जिसमें उनके फल पक चुके हों और दरख्तों के साए भी बहुत बड़े हुए थे। ऐसे वक्त में इतना लंबा सफर, ये भी एक वजह थी, इतना लंबा सफर था, 350 मील, और किलोमीटर में कर लें तो 750 से भी ऊपर हो गए, तो बहुत दूर दराज का सफर था, सवारियां भी पूरी नहीं थी। तो हालात तो बहुत ऐसे थे कि जिसके अंदर निकलने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था कि इस वक्त हम निकल जाएं, कोई और टाइमिंग होती तो अलग बात थी। यानी हाल ये था कि ऊंट भी काफी नहीं थे, इतनी दूर जाना है, एक एक ऊंट पे बारी भी सवार होते तो 18 आदमी के लिए एक ऊंट था। इतने ज्यादा कमी थी, इसीलिए इसको जैशुल उसरा कहा जाता है, यानी तंगी का जो उसरा था ना, यानी तंगी का जो लश्कर, जैश लश्कर और उसरा तंगी। अब ऐसे में वो ही जा सकता था जिसको ईमान इतना प्यारा हो, सवारी भी नहीं है, खाना पीना भी नहीं, खाना पीना भी कम था, यानी खजूर के सिवा कुछ नहीं था, और वो भी एक एक खजूर किसी को दी जाती थी। और साहबा ने कहा कि उसकी भी हमें कदर तब आई कि जब वो एक खजूर भी खत्म हो गई, जब वो एक भी खत्म हो गई तो फिर क्या था, फिर खजूर की गुठली को चूसते थे, अगर घर नहीं बैठे हुए चलना भी आगे, फिर दरख्तों के पत्ते भी उनको खाने पड़े, यहां तक कि होंठ सूज गए थे उनके, पानी भी नहीं था। तो फिर हालांकि सवारियां तो बहुत कम थी, इसके बावजूद फिर उनको ऊंट जिबा करने पड़े, और उनके मेदे और आंतों का पानी निकाल के वो पिया। तो आसान नहीं था, बहुत मुश्किल सफर था। यानी आप हर सख्ती को आप सोच लें कि जो आपके जहन में आ सकती है, वो हर सख्ती सोच लें, वो उस वक्त थी। तबूक जो था ना, ये रोम की सरहद पे था, आज भी ये शहर है वहां पे, तबूक का शहर, अगर आप कभी जाके देखें तो। तो इन सारे हालात को जहन में रख के अब हम ये आयात पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले और आपको अंदाजा हो कि किस वक्त की बात की जा रही है, और आप सही से इन आयात को समझ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मा लकुम, क्या है तुमको, इद क़ीला लकुम, जब कहा गया तुमसे, इनफिरू, निकलो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, इत्थाक़लतुम इलल अर्द, तुम बोझ से झुके जाते हो जमीन की तरफ, यानी अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ने के लिए निकलने को जब कहा जाता है तो तुम जमीन से चिमट जाते हो। क्या मतलब है, यानी कि तुम्हारे अंदर रिलक्टेंस है, तुम नहीं जाना चाहते, तुम इतने लंबा सफर या ये जो सारी सहूबतें हैं तो ये सारी बर्दाश्त करने से घबराते हो। अब ये जंग इसलिए भी बहुत डिफरेंट थी कि आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जंग पे जाने के लिए सब लोगों को नहीं कभी कहा था कि सारे निकल खड़े हो, एक एक बंदे को जाना है, सिवाय उसके जिसके पास कोई उजर है, सिवाय जो कि यानी कोई जेन्युइन रीजन है, कोई मसलन हैंडीकैप्ड है, कोई इतना बूढ़ा है, कोई बीमार है, उसके अलावा सबको निकलना, ऐसा कभी नहीं कहा था किसी जंग में भी नहीं। मगर ये जंग वो थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको हुक्म दिया, हर एक को जाना, कोई पीछे नहीं रह सकता, यानी ये फर्ज़े आइन हो गया। एक होता है फर्ज़े आइन, एक होता है फर्ज़े किफाया। फर्ज़े आइन जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हर एक के ऊपर इंडिविजुअली फर्ज है। फर्ज़े किफाया क्या होता है, जो कि अगर कम्युनिटी में थोड़े से लोग भी कर लें, कुछ लोग भी कर लें, तो वो अदा हो जाता है, हर एक, जरूरी नहीं कि हर एक करे, लेकिन अगर किसी ने भी नहीं किया तो फिर गुनाह है, थोड़े भी कर लें तो हो गया वो। फॉर एग्जाम्पल नमाज जनाजा पढ़ना, ये फर्ज किफाया है, थोड़े लोग भी जाके पढ़ लेते हैं तो फर्ज अदा हो गया। तो यहाँ पे फर्ज़े किफाया नहीं था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जब किसी जंग में जाते थे तो इशारतन कहीं और का जिक्र करते या बताते नहीं थे कि किस जगह जा रहे हैं, लेकिन इसने वाजे कर दिया था कि यहां हमने जाना है, तबूक तक जाना है। तो सबको पता था कि कितना मुश्किल सफर, फतेह मक्का में तो बताया ही नहीं गया था ना कि वहां जा रहे हैं। तैयारी का भी आपने हुक्म दे दिया खुल्लम खुल्ला कि इसकी तैयारी करो, नाम लेके बता दिया ताकि लोग अच्छी तरह तैयारी कर लें, उनको अंदाजा हो कि हमने जाना कहाँ। और एक एक फर्द के लिए जरूरी था कि वो निकले। अच्छा अब देखें, अब ऐसे हालात में जब ऐसी कॉल आ जाए तो फिर कोई पीछे रह जाए तो उसके ईमान मशकूक है फिर। तो इन आयात में जो जो गजवा तबुक था, आपको जैसे जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गजवा था, इसमें जंग नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से समझ लें कि एक टेस्ट था, अल्लाह ताला ने अभी इनको और मजबूत करना था, सख्त तरीन टेस्ट। अब ये जो बात यहाँ पे कही जा रही है, ये ना आप समझेंगे कोई भी नहीं जाना चाह रहा था, वो सारे ही बस किसी तरह बहाने कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। मगर यहाँ उन लोगों का जिक्र है जिनमें रिलक्टेंस थी, जिन जो पीछे रह रहे थे। तो अब जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी का हुक्म दिया और लोगों को कहा कि इसके लिए आप लेकर आए सामान, इसके लिए चाहिए चीजें, ज़ादेराह भी तो चाहिए था, और फिर जंग की तैयारी और असलहा वगैरह और सवारियां और ये सब कुछ का इंतजाम करना आसान बात तो नहीं थी। यही वो मौका है जिसके बारे में आप इतना सुनते हैं ना, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का सारा सामान ले आए थे, ये वाला वो मौका है। कोई चीज़ नहीं घर में छोड़ी थी। हज़रत उमर फरमाते हैं कि इस मौके पे मैंने सोचा कि आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊँगा, तो वो अपने घर का आधा सामान उठा के ले आए। कुछ होता नहीं था उनके पास, गुर्बत इतनी ज़्यादा थी, घर में जो भी चीज़ें थी आधी घर में छोड़ी आधी लेकर आ गए। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आए, और उनके घर का कितना का सामान होगा, लेकिन हर एक को पता होता है ना कि किसके घर में कितना कुछ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, जब देखा ना, तो अबू बकर सिद्दीक रिच आदमी नहीं थे उस वक्त, तो पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा, हमारे अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है, सारा ही कुछ ले आए थे। हम तो पूरी जिंदगी भी कोई सोचते रहे ना कि ऐसा कोई ऐसी कोई कुर्बानी दे, आधा तो क्या चंद चीजें भी हमसे दी नहीं जाती, आधा पूरा पूरा तो खैर छोड़ ही देना, हज़रत उमर तो आधा लेकर आए थे, आधा भी नहीं हम कभी दे सकते। हज़रत उमर कहते हैं कि उस दिन मुझे यकीन हो गया मैं कभी अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। तो ये वो वाली जंग है। इसी तरह इसी जंग के लिए हज़रत उस्मान इतना ज्यादा माल लेकर आए थे, दिरहम और दीनार लेकर आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब खिदमत में उन्होंने पेश किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से उन दिरहम और दीनार को उछालते थे और फरमाते थे उस्मान आज के बाद जो भी अमल करे उसको कोई नुकसान नहीं है। यानी इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए थे, ये हजरत उस्मान की बहुत बड़े बुलंद दर्जात की बात है कि कितनी अल्लाह ताला ने उनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी उनको जिंदगी में ही दे दी कि आज के बाद कुछ भी करें उनके कोई चीज नुकसान नहीं देगी। सुभान अल्लाह। तो ऐसे भी लोग थे, ऐसा नहीं था कि सभी लोग ऐसे थे जो पीछे हटने वाले, जाहिर है ऐसे भी लोग थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ भी बहुत सारा सामान लेकर आए, लेकिन 30,000 का लश्कर था, 30,000 का, और उसके लिए पूरी तैयारी करना आसान काम नहीं है। ऐसे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम जमीन से लगे जाते हो जिस वक्त तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो? यानी जब अल्लाह ताला के रास्ते की कॉल आए तो मोमिन के लिए ये जायज नहीं है कि वो बैठा ही रह जाए, इसमें हिलजुल ना हो, कोई हरकत ना हो। बल्कि मोमिन जो ईमान वाला है, जिस वक्त अल्लाह ताला के रास्ते की कॉल आती है तो उसको तैयार होना चाहिए, जोश से उठना चाहिए, अल्लाह ने पुकारा है। ये वो आयात हैं, याद रखें कि जिन्होंने उन लोगों को, मदीना के लोगों को, कई 100 मील का सफर शदीद गर्मी में और सख्त तरीन हालात में करने को बेतैयार कर दिया था। इस तरह से इन आयात को आज सुनिएगा और फिर उसके बाद सोचिएगा कि इन आयात के बाद अल्लाह के काम के लिए क्या मैं खुद को तैयार नहीं कर सकती? ये है सोचने का नुक्ता। फरमाया, अरदीतुम बिल हयात दुनिया मिन अल आखिरा, क्या तुम दुनिया की जिंदगी पे राजी हो गए हो आखरत के मुकाबले में? तुम्हें दुनिया चाहिए कि फल पक गए हैं, आराम से घर में बैठे हैं, आगे जाना कितना हमारा टाइम लगेगा, कितना मुश्किल सफर होगा, गर्मी कितनी होगी, हाय कैसे जा सकते हैं, हाय क्या करें, ये तो बड़ा मसला हो गया, हम तो नहीं जा सकते। क्या तुम दुनिया की जिंदगी पे रीझ गए आखरत के मुकाबले में? देखें, यही फर्क जो एक मोमिन और एक मुनाफिक में है ना, ये बात को गौर से सुनिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वो तो मुनाफिक थे, देखो कितने बुरे, देखो कैसे। हालांकि आज बहुत से किरदार आप देखेंगे कि जिनकी मुमासलत, रिजेम्बलेंस मुनाफिकीन से ज्यादा है, बहुत सारे किरदार आज आपको नजर आएंगे। क्योंकि इस्लाम से जो हमारा ताल्लुक है ना, हर एक से कोई ताल्लुक होता है ना, आपका अम्मी से एक ताल्लुक है, शौहर से ताल्लुक है, बच्चों से ताल्लुक है, किसी से ताल्लुक मजबूत होता है, किसी से कमजोर होता है, दोस्तों से ताल्लुक होता है, बहन भाइयों से होता है, हर एक का ताल्लुक एक दर्जे का तो नहीं है ना, डिफरेंट है ना। इसी तरह इस्लाम से ताल्लुक में हर कोई डिफरेंट है और इसके दो दर्जे होते हैं। एक दर्जा ये है कि इंसान की सारी वफादारी, उसका जीना मरना, उसकी जिंदगी मौत सब इस्लाम से वाबस्ता हो, इस्लाम उसकी जान हो, जान हो सबसे फर्स्ट नंबर पे हो, ठीक है। और दूसरा ताल्लुक इस्लाम के साथ ये होता है कि असल इंसान का इंटरेस्ट तो कहीं और हो, जाहिर हो तौर पे एक रस्मी सा ताल्लुक इस्लाम के साथ भी हो जाए। एक खाना इस्लाम का रखा हुआ है, उसमें कुछ चंद रस्मी सी चीजें, नमाज रोजा कर लिया, बस इतना सा है, उसके बाद कुछ नहीं, बस इस्लाम है, ठीक है, बस एक नाम है, दैट्स इट। तो आप बताएं सच्चा मोमिन कौन सा है? एक वो है ना कि जिस जिसकी जिद दिलचस्पियां कहीं और हैं, बस जाहिर जाहिर पे इस्लाम है। तो सच्चा मोमिन तो वो है जिसकी सारी वफादारी इस्लाम है, इस्लाम ही के साथ वो जीता मरता है, उसके कहीं और इंटरेस्ट नहीं है। वो हमारे मुल्क में कहते हैं ना, जिसने अपना बाहर अकाउंट खुलवाए में, अपने बाहर पैसे रखे में, उसका मुल्क किस वफादारी के साथ क्या ताल्लुक? कहते हैं जिसका जीना मरना इस मुल्क के अंदर ही है, वो है सच्चे वफादार, ऐसे कहते हैं ना। तो जिन्होंने अपने इंटरेस्ट भी बाहर रखे हुए इस्लाम से, जिनको ये होता है कि बस इस्लाम के ऊपर कोई मुश्किल आई तो कहीं और बाहर भाग जाएंगे, उनका ताल्लुक कैसा होगा इस्लाम के साथ? आप दुनिया के इस मामले में तो इन बातों को जानते हैं, दीन के मामले में भी समझे। कोई आफत आई, कोई इसके ऊपर मसला आया, हम तो ये बन जाएंगे, हम तो अपने नाम ये बदल देंगे, हम तो अपने हाल हुल ये बना लेंगे, हम तो ऐसे हो जाएंगे। इसका मतलब इस्लाम से ताल्लुक कितना कच्चा है, बहुत कच्चा ताल्लुक है। तो कोई लोग ऐसे होते हैं जिनकी दिलचस्पियां कहीं और अटकी हुई होती हैं, उनके इंटरेस्ट कहीं और होते हैं, उनकी जिंदगी का महवर जो होता है ना, सेंटर, वो कोई और चीजें होती हैं। इस्लाम एक साइड की चीज है बस, वो कभी कभी रमजान के रमजान हो गया उस तरह, बस वो इस्लाम का एक जोश जाग उठा, उसके बाद कोई इस्लाम का कुछ पता नहीं। तो जो दिलचस्पियां कहाँ अटकती हैं इंसान की, ये बताएं, कहाँ उसके इंटरेस्ट, कहाँ उसके शौक, कहाँ उसके वक्त, कहाँ उसकी जिंदगी लग रही होती है, घरों में, जॉबों में, बिजनेस में, औलाद में, आराम में, आसाइशों में, गपशप में, दोस्तों में, यही होती है ना इंसान की दिलचस्पी के महवर और मरकज। तो अल्लाह ताला का दीन और उसके दीन के काम, इनकी जगह इन कामों ने ले ली होती है, उन्हीं में मशगूल रहते हैं। तो जब कोई ऐसा होता है तो फिर समझ लें कि दीन के साथ पूरा वफादार नहीं है, कि इसकी तो इंटरेस्ट ही कहीं और है, इसके तो मफाद ही कहीं और है, इसकी तो खुशियां गम ही कहीं और है। फिर जाहिर है, फिर जब ऐसा होता है तो परेशानी भी उन्हीं चीजों के ऊपर होती है, अगर उनमें से कोई चीज छिन जाए, खुशी भी उन्हीं चीजों में मिलती है अगर उनमें कुछ हासिल हो जाए, या कोई चीज उसमें कोई परेशानी आ जाए तो ऐसा डिप्रेशन होता है कि हद से ज्यादा इंसान उठ ही नहीं पाता। फिर वहीं के नफे नुकसान बड़े होते हैं ना, कोई और चीजें नहीं उसको बड़ी लगती, फिर ये बड़ा लगता है। तो समझें कि मैं, क्योंकि आपको ये समझाना चाह रही हूँ, आपको ऐसे ना फील हो कि वो को मुनाफे तो पता नहीं कौन सी और ही कोई मखलूक थे, वो कहीं किसी और प्लेनेट से उतरे हुए थे और देखो कैसे थे वो, ये बात नहीं है। वो भी उन्हीं में रहते थे, वो भी कलमा पढ़े हुए थे, वो भी नमाजें पढ़ते थे, वो भी रोजे रखते थे, वो भी कुछ थोड़ा बहुत सदका और खैरात भी करते थे। फिर क्या प्रॉब्लम था? ये प्रॉब्लम था, एक वो लोग हैं जो सब कुछ लुटा देने को खड़े में, एक वो लोग हैं जो देख के चलते हैं, भाई इतने तो हम वो समझते थे कि हमें ऐसे सुफहा थोड़ी हैं, हम इतने बेवकूफ थोड़ी हैं, हर चीज ही बस इसके लिए दे दें, हम हर अपना कुर्बानी इसके लिए कर दें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम क्या दुनिया की इसके ऊपर रीझ गए हो, आखरत के मुकाबले में दुनिया पे राजी हो गए हो? फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरती इल्ला कलील। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, सिर्फ गज़वा तबूक के उसमें ना आप देखें, ये स्टेटमेंट फॉर एवर है। तो नहीं दुनिया की जिंदगी का सामान आखरत के मुकाबले में मगर बहुत थोड़ा, बहुत कलील, टेम्प्रेरी, एक तरफ आखरत और एक तरफ दुनिया। अब तुम किस पे राजी हो रहे हो? दुनिया पे, जबकि आखरत के मुकाबले में दुनिया तो बहुत थोड़ी है। समझ लें कि एक आदमी है, उसको बादशाहत मिल रही किसी मुल्क की, अब वो कह दे नहीं ये मैंने तो छोटी सी झोंपड़ी लेनी है, तो उसको लोग कहेंगे कितना बेवकूफ है, दुनिया और आखरत का कंपैरिजन तो इससे भी बड़ा है, ये तो छोटी चीज है, इससे भी बड़ा है, इसलिए कि दुनिया की हर चीज पुरानी हो जाने वाली, खत्म हो जाने वाली, इसमें जुदाइयां हैं, और आखरत की हर चीज हमेशा रहने वाली, और उसका मजा, उसकी का जो शौक है वो बढ़ता ही रहेगा, वहां कम नहीं होगा, कभी पुरानी नहीं होगी और जुदाई कोई नहीं। दुनिया में आप कोई भी चीज ले लें, जितना मर्जी आप शौक से उसको खरीदें, आप उसको खरीदते हैं बड़े शौक से लाते हैं, बल्कि कई चीजें होती हैं हम उसके ऊपर, मतलब जब हमें कोई वो चीज मिल जाती है, चाहे वो कोई डिग्री है, चाहे वो कोई किसी के साथ रिश्ता कायम करना है, या बहुत खुशियां मनाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? वो चीज ही पुरानी होने लगती है, उसका मजा खत्म होने लगता है। एक दिन या तो हम छोड़ के चले जाते हैं या वो हमें छोड़ के चली जाती है। ये तो बहुत कलील सामान है, लेकिन कलील के पीछे देखो हम कैसे भागते हैं। और जिसने अपने लिए इस दुनिया के अंदर जितना ज्यादा जमा किया होगा, उसके लिए इसको छोड़ के जाना उतना ही तकलीफ देह होगा। जैसे समझ लें, एक मुल्क में किसी को, एक बंदे ने बहुत अपना बिजनेस चमकाया हुआ, घर बार सब कुछ है, उसको उठा के वो कहते हैं हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, आप चले जाएं अपने मुल्क। उसको जहाज में बिठाते और कोई चीज साथ नहीं ले जाने देते। तो अब वो सोचता है हाय काश मैंने वो अपने मुल्क के अंदर ही कुछ बनाया होता और वहां पे कोई अकाउंट खुलवा लेता। कुछ औरतें फौरन सोचेंगी हाय काश हम अपने जेवर ही वहां के लॉकर में रखवा लेते। अब वो जहाज चल पड़ा, उसका सब कुछ यहीं रह गया। यही बिल्कुल मिसाल है इस दुनिया से जाने की। यहाँ पे कितनी भी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ले, उसके बाद क्या है, इसको छोड़ के जाना है। कुराने पाक बार बार इसी चीज का तो हमें बताता है। सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। इसको देखो हमने कितना अपना हम और गम बनाया हुआ ना, इसके ऊपर इतना फूले नहीं समाते हैं, इतनी शेखियां मारते हैं, इतना फखर जिताते हैं, तकब्बुर आ जाता है और कितनी शो ऑफ होती है इन चीजों के पीछे, जो धोखे का सामान है, जिनको कुरान कहता है धोखा है ये। फिर सूरह अनाम में भी और सूरह हदीद में भी फरमाया दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है। सूरह ताहा में फरमाया दुनिया की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी का सामान आजमाइश है। फिर हदीस में आता है अल्लाह के नजदीक दुनिया की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी की ये जो अहमियत है, ये मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। मच्छर कितना छोटा और उसका पर सोचें जरा। इब्ने कसीर में वो रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया और आखरत का मुकाबले को समझाना चाहा तो फरमाया अपनी कलमे की उंगली की तरफ इशारा करके कि इस उंगली को कोई समंदर में डुबो के निकाले तो इस पे जितना पानी लग जाए ये दुनिया की जिंदगी है, और इसके मुकाबले में आखरत कितनी है, जितना ये समंदर है। सोचें हम किस चीज पे खुश होते हैं जो इतना सा लग गया, और किस चीज को इग्नोर कर देते हैं जो समंदर है। समंदर नहीं पाना चाहते, इसके ऊपर ही खुश होते और इतना ही लेना चाहते, इस पे ही राजी हो गए हैं। ये तो बहुत कलील है। इसी तरह इब्ने कसीर में एक और भी रिवायत है, अब्दुल अजीज बिन मरवान, उसने जब अपने इंतकाल के वक्त अपना कफन मंगवाया तो उसको देख के कहने लगा बस मेरा तो दुनिया से यही हिस्सा था, मैं इतनी दुनिया लेके जा रहा हूं बस। फिर पीठ फेर के रोने लगे, कहने लगे हाय दुनिया तेरा ज्यादा भी थोड़ा है और तेरा थोड़ा तो बहुत ही थोड़ा है, अफसोस हम तो धोखे में ही रहे। अल्लाह अकबर, ये इन चीजों के लिए, इन पैसे के लिए, कोई शोहरत के लिए, कोई घरों के लिए, कोई करियर्स के लिए, कोई डिग्रीज के लिए मरे चले जाते हैं, लेकिन ये क्या है, ये बहुत कलील है। ये सब भी किसी को मिल जाए, किसी को इस पूरी दुनिया की बादशाहत भी मिल गई तो वो भी कलील है, कलील है, कलील है, थोड़ा है। अल्लाहु अकबर। असल में ये बात समझ तब आती है जब इंसान यहाँ से जाने लगता है। जब तक यहाँ है ना, उस वक्त तक ये समझ नहीं आते, उस वक्त तक जोड़ते ही रहना चाहते। तो जब ये आयात हम पढ़े ना तो अपने अंदर जरूर झांके, जरूर झांके। ये इसीलिए हमें बताई जाती है, किन चीजों में लगे हुए, कलील में या कसीर चाहते हैं अपने लिए। और देखिए, इस दुनिया में आप कितनी भी लंबी जिंदगी पाले, वो कितनी है? मैक्सिमम 100 साल, मैक्सिमम, अगर हम में से कोई बहुत भी जी लेता। और वहां की जिंदगी कितनी है? इनफिनिट, जो कभी खत्म ही नहीं होनी उसकी। इसलिए कोई नंबर नहीं बताया जा सकता कि लाख साल, करोड़ साल, बिलियन ट्रिलियन साल, आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, वो जिंदगी खत्म नहीं होगी। और इस जिंदगी को लोग कहते हैं पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटेगी? वो पहाड़ जैसी कोई नहीं है, कट जाती है, सबकी कट जाती, गम में कटे या खुशी, ये पहाड़ जैसी नहीं है। वो है पहाड़ जैसी जिंदगी, उसमें अगर गम आ गया तो कभी खत्म नहीं होना, और अगर खुशी मिल गई तो वो भी कभी खत्म ना होगी। दूसरे ये कि देखें, यहाँ पे ये मुनाफिकीन की बात बताई गई ना, हमें इन आयात को पढ़ते हुए ये जरूर देखना है, आगे भी और बातें आएंगी, हमें ये जरूर चेक करना है कि जिनको कंडेम किया जा रहा है यहाँ पे, उनके जैसी कोई बात मेरे अंदर तो नहीं है? इसका एक जर्रा, एक फ्रैक्शन, एक जरा सा पार्ट भी कहीं मेरे अंदर तो नहीं है? मैं कहीं मुनाफिकीन से मुशाबहत तो नहीं रखती? मुझे तो ईमान वालों के साथ मुशाबहत रखनी चाहिए। तो जब दीन को मेरी जरूरत होती है तो मैं क्या करती हूं? मैं अपना आराम देखती हूँ, मैं अपना मफाद देखती हूँ, मैं अपनी अपनी चीजें देखती हूँ, पहले अपने अपने सारे जो भी मेरे काम है वो सब देखती हूँ, या हर मुश्किल, गर्मी, सर्दी, जैसे मर्जी हालात हो, मौसम कुछ भी हो, मुशक्कत कितनी भी हो, थकन कितनी भी हो, या कोई नुकसान ही चाहे पैसों का हो रहा हो, मैं तैयार होके खड़ी हो जाती। क्या मेरा ये लेवल है? अपने आप को रख के देखे ना, क्या मैं कुर्बानी के इस लेवल पर हूं या नहीं? देखिए, हर एक का एक लेवल होता है ना, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। कोई कहता है पैसे तो दे सकती हूं, मगर देखिए गर्मी मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। कोई कहता है ठीक है सामान तो मैं दे दूंगी, मगर टाइम नहीं मैं दे सकती। कोई कहता है टाइम तो दे सकती हूँ, मगर नहीं भाई, और तब तक दूंगी जब मेरे लिए सूटेबल होगा। जरा सी भी मुझे तंगी हुई या थकन हुई तो तब नहीं मैं और बैठ सकती। तो थोड़ा थोड़ा सा अपनी सहूलत का करते हैं, अपनी कंफर्ट वाला, जिसमें अपने लिए आसानी हो, जिसमें अपने ऊपर जरा सा भी गर्द ना पड़े, जरा कांटा भी ना चुभे, वहां तक करते हैं या उससे आगे बढ़ते हैं? जिसमें मौसम भी साथ दे रहा हो, जिसमें सपोर्टिव माहौल भी हो, कोई दोस्तें भी साथ जा रही हैं, जिसमें खाना पीना भी कुछ होगा, कुछ पार्टी टाइम भी होगा, जिसमें कोई तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ रही, जिसमें कोई पिकनिक टाइप चलो हो जाए, तो फिर कोई हम मैं भी साथ चल पड़ती हूँ। मगर इतने मुश्किल, और वहां पे जाके उन्होंने कोई पिकनिक थोड़ी ही करनी थी तब वो पहुंच गए। वहां पे भी आगे लड़ना है, अभी उनको थोड़ी पता है कि वहां पे जंग नहीं होगी, तो जा तो जंग के लिए रहे हैं ना, तो पता नहीं आप वापस भी आते हैं कि नहीं आते, जान का खतरा है। तो ऐसे ईमान वो है अल्लाह के नजदीक काबिले कदर, कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कॉल आए तो तुम ये ना सोचने बैठ जाओ कि मेरे इसका क्या होगा और उसका क्या होगा, और मेरे तो फल पके में, और मेरे तो आराम है, और यहाँ पे तो मजे हैं, और फिर वो तो गर्मी इतनी है और सर्दी इतनी है, और बच्चों का पीछे से क्या बनेगा, और मेरे लिए थकन कितनी हो जाएगी, और मेरी तो कोई हिम्मत नहीं है। नहीं, निकलो फिर। ये जो ईज के अंदर निकलना है ना, यहाँ तक तो मुनाफिक भी पहुंच गए थे, यहाँ तक तो मुनाफिक भी कर लेते थे। मोमिन का तो काम इसके बाद ही तो शुरू होता है, मारे बांधे को या दिखावे के लिए वो भी कर लेते थे। दूसरे गजवात में कई में गए थे वो, ऐसी नहीं कि कभी गए ही नहीं थे वो, लेकिन फिर आप देख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया वहां। तो ये बात ना हाईलाइट करने वाली है, फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखरत इल्ला कलील। क्यों? इसलिए कि जब भी हम दीन के लिए निकलने लगते हैं, या कोई भी कुर्बानी देने लगते हैं, या दीन पे चलने लगते हैं, तो कौन सी चीज़ है जो हमारे पैरों को पकड़ लेती है? क्या चीज है जो रुकावट बनती है? दुनिया ही का कोई फायदा, दुनिया ही की रजामंदी, दुनिया ही का कोई मफाद, कोई कोई ऐसी कोई लालच, कोई यहां का ही कोई चीज होती है जो हमारे पैरों को बांध देती है। दुनिया के लोगों के मूड, उनकी रजामंदी या उनकी खुशी, या अपने कोई फायदे, जो भी यहीं से रिलेटेड है, सब कुछ यहीं का लगाया हुआ है। वो जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी ना, कि जिसने बाहर अपने अकाउंट खोले होते हैं, कहते हैं ये वफादार नहीं है। तो आप भी अगर अपने अकाउंट बाहर ही रखती हैं, दुनिया से ही अपना सारा मफाद जोड़ा हुआ है, तो आपको इस्लाम का वफादार कोई कैसे समझ सकता है, जिसका तो जीना मरना ही इस्लाम हो, वो है उसका वफादार। इसीलिए हमें कहा गया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि एक पैर अंदर रखा हुआ और एक बाहर, थोड़ा आए थोड़ा नहीं आए, कन्वीनियंस का किया, जितने में सहूलत है अपनी, जितने में आसानी है, उसके अलावा नहीं। तो इस चीज को अगर हम हाईलाइट करके अपनी जिंदगी के हर फेज में, जहां हमें रुकावट आए दीन पे चलने में, तो इस आयत को अगर याद कर लें, तो मेरे ख्याल बहुत इंसान के लिए, नसीहत के लिए ये हिस्सा काफी है। फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखरत इल्ला कलील। फिर जब आप ये हिस्सा पढ़ेंगे ना, तो फिर हर चीज ही छोटी लगेगी। क्या इतनी ही खातिर मैं अपनी आखरत गंवा दूं, आखरत का नुकसान कर दूं, इतने कलील फायदे के लिए? ये तो सारा का सारा फरमाया, पूरी सारा मता जो भी इस दुनिया का ना, सारा ही कलील है। और इसी के लिए हमने अपना सब कुछ देखो लगा दिया, कलील के लिए अपना जहन लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, अपना सब कुछ, अपनी एनर्जी लगा के रख देते हैं इस कलील के लिए। और लेके क्या जाना है साथ यहां से? एक कफन बस, दैट्स इट। इल्ला तगफिरू युअज्जिबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर नहीं तुम निकलोगे तो अल्लाह ताला तुमको अज़ाब देगा, दर्दनाक अज़ाब। यानी ये ना समझना कि तुम इस नबी के मानने वाले हो गए, तो तुमने कलमा पढ़ लिया, तो अब जो मर्जी करो सब ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो यही ख्याल है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? नहीं तुम निकलते तो दर्दनाक अजाब। ये कोई काफरों को नहीं कहा जा रहा, ये उसी सोसाइटी को कहा जा रहा, जिसमें से कुछ लोगों के अंदर रिलक्टेंस थी निकलने में। मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब ये आयात पढ़ती हूँ, तो वैसे तो हम कहते हैं कि हाय काश हम उस जमाने में होते, तो पता नहीं हमने क्या मार के मार लेने थे। मैं सोचती हूँ वाकई अल्लाह ताला तेरी हिकमत होती है, कि जिस जमाने में जिसको भी पैदा किया, इसमें भी तेरा फैसला है, वाकई दुरुस्त फैसला है। हमारे जैसे वहां पे होते तो कहीं इन्हीं की सफ में ना होते, क्योंकि जो हमारे आज के हालात हैं वो वाकई इनसे ज्यादा मिलते हैं। कि पहले अपना अपना देखो, वो तो हम यहाँ पे पागल समझे जाएंगे जो कि कुछ भी ना देखे, तो वो भी तो उनको पागल ही कहते थे। कौन है यहाँ पे जिसको, जो हर चीज ही अपनी कुर्बान करने बैठ जाए दीन के लिए? इसको तो कोई समझा ही नहीं जाता इस काबिल के ये दीन के लिए भी कोई ऐसा करे। हाँ अपने रातों को जागे, आपके एग्जाम है, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, आप रातों को जागे, आपकी जॉब आपको बड़ी दूर मिल गई लेकिन बड़ी अच्छी जॉब है, तो आप लंबे लंबे घंटे घंटे की भी सफर करके जाएं। अंडरस्टैंडेबल है, सबके लिए होना चाहिए ऐसे। औरतें बच्चों को डे केयर में छोड़ के जॉब के निकले, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। देखे ना भाई, जॉब भी तो करनी है, कोई घर में मेहमान आए, को कुछ है, अब लेकिन देखो कारोबार है, बिजनेस है, जाना है, आदमी ने भी जाना है, औरत ने भी अपनी नौकरी के लिए जाना है, तो कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन एक बात अंडरस्टैंडेबल नहीं है, कि दीन के लिए भी कोई निकल सकता है, इसके लिए भी कोई कुर्बानी दे सकता है, इसके लिए भी कोई सफर कर सकता है, इसके लिए भी कोई रात को जाग सकता है, इसके लिए भी कोई अपना बच्चा किसी डे केयर में डाल के और फिर कहे कि मैं कोई काम कर लूं। लेकिन मैं डालने को कोई नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ मैं मुकाबला कर रही हूं कि कभी आपने सोचा ऐसे कि वो सब बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये वाली बात पे आके हम सोचते हैं इतनी क्या पागल हो गई, तो बिल्कुल ही फनेटिक हो गई, तो बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट हो गई, इसका तो दिमाग ही चल गया। उसमें अचंभा लगता है, एक दफा कर लेंगे ना सारी जिंदगी के लिए उसी को मेंशन करते रहेंगे, हम तो वैसे गए थे, हमने तो ये किया था। और कलील के लिए कितनी भी कुर्बानी दे दें, हमें कभी भी वो भारी नहीं लगती, हमें कभी भी वो कोई मुश्किल नहीं लगती, शौक शौक से करते हैं, पैसे जो मिलने हैं कोई नहीं। आपको लगेगा ऐसे कोई पागल नहीं आपको लगता कि वो बाजार में पूरा दिन घूमता रहे, शॉपिंग कर रहा है, चाहे वो कोई शादियों की शॉपिंग है या ये है। कहते हैं नहीं, अंडरस्टैंडेबल है, वो भी हमें बिल्कुल समझ आती है, नहीं मेहनत करनी पड़ती, तैयारी करनी है ना, वो जो जिधर जाके हमेशा रहे ना उसकी कोई तैयारी ना करे वो हमें नॉर्मल लगते हैं, और कोई तैयारी करने लग जाए तो हमें पागल लगते हैं। देखो जरा सा कि हमारी सोच कैसी हो गई, हम किस तरह चीजों को देखते हैं, पहले तो सोच ही बदलने की जरूरत है ना, ये सारी चीजें नॉर्मल है क्या? नहीं, ये तो सब कलील है, ये नहीं कोई कुछ किसी को कह रहा कि ना ये करो, ना आप कमाई करो, ना आप कोई शॉपिंग करो, ना आप कोई घर को देखो, कोई नहीं ये कह रहा, सिर्फ एक कंपैरिजन है, क्योंकि देर इज अ वेरी फाइन लाइन। बहुत जल्दी हम अपनी ख्वाहिशात को भी कहते हैं ये जरूरत है, वो जरूरतें नहीं होती, वो ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन हम उनमें गिर जाते हैं। जरूरत की हद तक तो सब ठीक है, लेकिन जब ख्वाहिशात इतनी बढ़ जाएं कि बस सारी जिंदगी ख्वाहिशात पूरी करने में ही लग जाए, तो क्या कमाई करेंगे आखरत की? अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर नहीं तुम निकलते ना, अल्लाह तुम्हें ऐसा आजाब देगा। तो अब आप सोच लें कि अपने आप को हम सोचें कि हमने फिर किधर से ये सोच लिया कि एक दफा कलमा पढ़ लिया तो अब बस हम तो बिल्कुल सेफ हो गए, अब तो कुछ भी करेंगे ना कुछ कोई कोई हमें चीज नुकसान नहीं देगी, जबकि उनको ये कहा जा रहा है नहीं निकलते तो दर्दनाक अजाब है। वयस्तबदिल कौमन गैरकुम, और दूसरी बात, एक तो दर्दनाक अजाब यानी चाहे दुनिया में आ जाएगा तो वरना आखरत में तो आज ही आ ही जाएगा, अगर तुम ये करते कि अल्लाह ताला की तरफ से कॉल आई है, क्योंकि जो रसूल जब हुक्म दे रहे हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से वो हुक्म है, और अब उसके आगे तुम सुस्त हो रहे हो, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम ले आएगा, कोई और कौम ले आएगा, तुम्हें रिप्लेस कर देगा, तुम्हारी जगह किसी और को ले आएगा, और वो फिर तुमसे बेहतर होंगे, तुम्हारी तरह के नहीं होंगे। यानी क्या एक कहने का, आप सोचें कि क्या कहा जा रहा है, कि तुम क्या समझते हो तुम्हारे करने से ही सारे काम होने हैं दीन के, या तुम नहीं निकलोगे तो अल्लाह ताला के पास कोई और है ही नहीं है, या अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्ला कोई तुम्हारा मोहताज है, अगर तुम नहीं करोगे कोई और आ जाएगा। इसका मतलब है जो काम भी हम कर रहे हैं, जो भी नेकी का काम अल्लाह ताला ही है जो हमसे ले रहा है, कुछ भी जो भी हम करें, चाहे कोई दीन की खिदमत कर रहा है, चाहे कोई कोई भी नेकी का काम कर रहा है, इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। देखें जब मैं और आप नहीं थे ना, तब भी दीन के काम हो रहे थे, कोई नहीं, नहीं कि हम ही पैदा हो गए तो आज हम पढ़ने और पढ़ाने वाले बन गए तो पता नहीं क्या हमने तीर मार लिया। और जिस दिन हम नहीं होंगे ना, अल्लाह का दीन तो तब भी चलना है, अल्लाह का दीन तब भी कोई पढ़ने पढ़ाने वाले होंगे, सीखने सिखाने वाले होंगे, आगे बताने वाले होंगे। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि आज मेरे से अल्लाह ताला कोई हिस्सा डलवा दे, कुछ मेरा भी कुछ छोटा सा पार्ट इसमें, कोई शेयर इसमें हो जाए, अदरवाइज अल्लाह को जरूरत नहीं है, कोई और ले आएगा, तुम नहीं करोगे कोई और नहीं तो और सही। ऐसे थोड़ी है कि अगर तुम्हारे से ही होना ये काम, तो अल्लाह ताला याद रखें किसी को रिप्लेस करके दूसरों को ला सकता है ना, अरब समझे कि हम तो अरब है, हमारे पास तो दीन उतरा, ये आया हमारे पास है, हम ही बहुत बड़े इसके ठेकेदार हैं, हमारी जगह तो कोई और ले ही नहीं सकता ना, वो ये सोचें ना किसी और जगह के लोग ये सोचें कि हम बहुत बड़ी चीज बन गए, तो अल्लाह ताला बदल सकता है। वो औरों को ला सकता है। वला तदुर्रूहु शैआ, और नहीं तुम उसका कुछ भी बिगाड़ सकते, कोई नुकसान नहीं दे सकते। यानी तुम अल्लाह को फिर ये नहीं कह सकते, अल्लाह तूने हमारी जगह क्यों रिप्लेस कर दिया, हम तो इतने ऐसे थे, हम तो ये हैं। नहीं, कोई अल्लाह ताला को क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, कोई अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कह सकोगे तुम अगर अल्लाह तुम्हारी जगह औरों को ले आए। तो अपने आप को कभी ये ना समझे कि मैं ही काम करती हूं, मैं ना करूं तो देखना जरा इनके साथ क्या होता है। ना ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट, ना मैं ये सोचूं, मैं ना इनको पढ़ाऊं तो पत्नी इनका क्या होगा। नहीं, मैं नहीं तो कोई और अल्लाह ला देगा। तो अल्लाह तेरा ही शुक्र है तूने मुझे ये तौफीक दे दी, अल्लाह तेरा ही शुक्र है कि तू मुझसे ये काम ले रहा है। तो ऑलवेज हम्बल रहें, ऑलवेज हमारे अंदर आजजी होनी चाहिए कोई भी नेकी करते हैं। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और ये बहुत बड़ा काम लगता है ना कि ये कैसे हो सकता है कि एक को हटा के अल्लाह दूसरा ले आए। नहीं, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, कुदरत का इजहार किया अल्लाह ताला ने, ये इसको इम्पॉसिबल ना समझना। इल्ला तंसुरूहु, अगर नहीं तुम मदद करोगे, पहले क्या कहा, अगर नहीं तुम निकलोगे, नहीं निकलते ना तुम अल्लाह के रास्ते में तो ये, और अगर तुम नहीं मदद करोगे उसकी, किसकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि निकलो तुम उनके, उनकी मदद करना क्या है, उस मिशन की, इस दीन की मदद करना है ना। अब जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अपने घर के काम तो नहीं उनसे करवा रहे थे ना कि भाई तुम मेरे घरों के काम करो, मेरा बिजनेस चलाओ, मेरी मेरी और मेरी खिदमत करो। नहीं, तो दीन के लिए बुला रहे थे ना। जो भी इंसान कहीं पे भी रहती दुनिया तक इस दीन की तरफ बुलाएगा, ये उसकी खिदमत नहीं है जो आप कर रहे हैं, या उसके साथ कोई आप मदद के लिए खड़े हो रहे हैं तो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है, समझ आई। ये तो उस दीन के साथ आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो अगर नहीं तुम मदद करोगे ना उसकी, फकद नसरहुल्लाह, तो तहकीक मदद की पास्ट में करेगा नहीं है ये बात। नसरा, मदद की उसकी अल्लाह ने, कब, याद करो, इज मैंने आपको क्या बताया था, इंग्लिश वाला इज नहीं है, अरबिक का इज, जब, यानी याद करो वो बात। अखरजहुल्लदीन कफरू, उसको निकाला था उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, वो बात याद करो। किस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला था, जिन्होंने कुफर किया उन लोगों ने कब निकाला था, कोई बात याद आई आपको, मक्का से निकालने के लिए कैसे सब एक हो गए थे, किस तरह मिल गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश करी थी और आपके घर को घेर लिया था। और उस वक्त सोचे मक्का के अंदर तो लोग ना थोड़े थोड़े करके निकल गए भी थे मक्का से, अब इस वक्त मक्का के अंदर यहाँ तो बिल्कुल ही जो बेबस से मुसलमान थे वो थे, यहाँ वो कमजोर ईमान वाले मुसलमान थे जिनका, जिनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम जाएं हिजरत करें, बस वो थे, इसके अलावा और नहीं थे लोग, थोड़े थोड़े करके हिजरत कर चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साथी बच गए थे जो आपके साथ थे, जैसे अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत अली थे। तो उस वक्त यानी आपके पास कोई ऐसा जत्था नहीं था, ऐसी सपोर्ट नहीं थी, ऐसी कोई कोई आपके साथ ऐसे साथी नहीं थे ये चंद एक के अलावा, और मुखालफत का ये हाल था कि सब एक हो गए थे कि हाँ इनको खत्म कर दिया जाए। और उस वक्त जब निकाला तो सानियस नहीं नी इद हुमा फिल गार, दो में से दूसरे की, जब वो दोनों गार में थे, जब निकाला उसको उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, तुम्हें वो याद है जब वो दो में दूसरा था, जब वो दोनों गार में थे, दो थे यानी सिर्फ दो, एक तरफ ये दो हैं तो दूसरी तरफ पूरा मक्का जो था वो ऐसे था जैसे खून का प्यासा है। उन्होंने तो सार की कीमत लगा दी थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जो भी इनको लेकर आएगा किसी भी हालत में, जैसे वो मोस्ट वांटेड लगा देते हैं डेड और अलाइव, इसी तरह उन्होंने इनाम रख दिया था आपके सर पे कि जो भी इनको लेकर आया, अब जिस जो घर पे भी बैठा है वो भी उठ के चल पड़ा कि मैं भी जाके जरा ढूंढता हूँ इनाम के लिए, कोई यहाँ पे $1 मिलियन का इनाम लगा दे कि फलां को जो पकड़ के लेकर आएगा। क्यों नहीं कोई एफर्ट करेगा। सोचें कि वो लोग ऐसे आपको तलाश कर रहे थे कि हर तरफ निकल गए थे। अब रास्ते तो वही हैं, जाहिर है मक्का से निकलने के किधर को जाएंगे, हर तरफ ये कुफार फैल गए। अब उस वक्त तुम तो नहीं खड़े हुए थे उनकी मदद करने के लिए, उनको बचाने के लिए। वो वक्त याद करो कि जब अल्लाह ताला ने उस वक्त अपने नबी की मदद की थी, कैसे उनको बचाया था जब वो दो में दूसरा था गार में। इज यकूलू, जब उसने कहा ली साहिब ही, अपने साथी से, ता तहज़न, गम ना कर, इन अल्लाह माना, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ। अल्लाह अकबर, ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पे भरोसा। इतनी मुखालफत है और इतने लोग भागे फिर रहे हैं ढूंढने के लिए, और आपके अंदर कोई घबराहट नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी क्यों घबरा रहे हैं? अपने लिए नहीं घबरा रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि वो आप तक ना पहुंच जाए। देखिए ये वो वक्त है कि जब गारे सौर तक ये दो साथी पहुंचे, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए ताकि अंदर से सफाई करें, कोई चीज ऐसी ना हो जो नुकसान पहुंचाने वाली है। तो गार को साफ करके जो सुराख वगैरह थे उनको अपना कपड़ा फाड़ के बंद किया, एक दो सुराख बाकी रह गए, उनमें अपना पाँव डाल दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि आप अंदर आ जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आ गए और बहुत थकावट थी, जाहिर है पैदल चल के आ रहे थे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रान पे सर रखे नबी अलैहिस्सलाम सो गए। इस दौरान में वो जो एक सुराख जिनमें जिस पे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैर रखा हुआ था, वहां से एक सांप ने उनको डस दिया, मगर वो हिले नहीं। कि चाहे सांप डस रहा है, सोचे कितनी तकलीफ होगी कि अगर मैं हिलूंगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल होगा, मगर तकलीफ इतनी थी कि आंखों से आंसू बह पड़े। और वो जाहिर है आंसू जो टपका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे आके गिरा, जिससे आप की आंख खुल गई। पूछने पे जब बताया कि या रसूल्ला मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मुझे किसी चीज ने काट लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन लगाया था, इससे तकलीफ दूर हो गई थी। ये वो वक्त है जो कितना मुश्किल वक्त था, कितना मुश्किल वक्त था। और ऐसे वक्त में कुफार जो थे वो इस गार तक पहुंच गए थे, इस गार तक पहुंच गए थे, इसके धाने पे आ गए थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त अगर वो अपने पैरों की तरफ देखते तो उनको हम नजर आ जाते, यानी इतने वो करीब थे, बिल्कुल ऊपर उसके टॉप पे खड़े हुए थे, नीचे ये बैठे, यहां तक वो पहुंच गए थे। यानी वो अपने पाँव भी देखते ना तो इनको देख लेते। अब इसमें उनको गम है कि हाय अब क्या होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या होगा। अल्लाहु अकबर, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ला तहजन, गम ना कर, इन अल्लाह माना, जिसके साथ अल्लाह हो फिर उसको गम की क्या जरूरत, उसको गम की कोई जरूरत नहीं। अल्लाहु अकबर। तो इस वक्त के बारे में ये भी वाक्य आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थक गए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कंधों पे आपको उठा लिया था, थकावट तो उनको भी हुई होगी, नींद तो इनको भी आ रही होगी, खुद नहीं सोए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुला दिया और आपको अपने कंधों पे बिठा के लेके चल रहे हैं। इसी वजह से तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके फरमाया था ना कि अब हमें हिजरत का हुक्म हो गया और आप मेरे साथ चलेंगे, कहती हैं मुझे उस दिन पता चला कि खुशी से भी कोई रोता है, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ना खुशी से रोने लगे कि मैं जाऊंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी सआदत थी उनके लिए, और ये सफर कितना सख्त सफर था, कितना खतरनाक सफर था, और उसके अंदर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का ये जज्बा। इसलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने एक दफ़ा रात को सितारों को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या किसी की नेकियां इन आसमान के सितारों के बराबर भी हैं? फरमाया, हाँ, उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो पूछने लगी, और मेरे बाप की? तो फरमाया, अबू बकर सिद्दीक की वो एक रात की नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकियों से बढ़ के। तो हजरत उमर कहा करते थे कि अबू बकर सिद्दीक मुझे वो अपनी एक रात दे दे और मेरी सारी जिंदगी की नेकी ले ले। सुभान अल्लाह। मगर नेकी जो है ना वो नसीबे वालों को मिलती है, जिनको सोबतें मिलती हैं, जो झिझकते नहीं, जो डरते नहीं, जो साथ चलने वाले होते हैं। और ये भी पता चलता है कि नेकी का कभी मौका गंवाना नहीं चाहिए। इंसान को पता नहीं कौन सी नेकी मुझे कहाँ तक पहुंचा दे। ये देखिए, एक नेकी है, एक, आपको नहीं पता है, कोई एक नेकी आपकी जिंदगी की वो हो जो आपकी तकदीर बदलते हैं। वो एक ही तो नेकी थी ना उस वाहिशा औरत की, के जो उसने कुत्ते को पानी पिलाया था, वो एक ही नेकी थी ना। तो किसी नेकी को भी इंसान ये नहीं सोच सकता कि ये तो इसमें क्या बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको क्या पता कौन सी नेकी को अल्लाह ताला कितना पसंद कर ले। ये एक रात उनकी पूरी, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की नेकियों का अंदाजा हम कर ही नहीं सकते। आसमान के सितारों के बराबर जिनकी नेकियां हैं, तो उनकी कोई कम थोड़ी है। लेकिन ये एक रात, अल्लाह हु अकबर, ये उनकी पूरी जिंदगी की नेकियों के, वो नेकियां मुकाबला नहीं कर सकती इस एक रात का। अल्लाह अकबर। और ये भी पता चलता है ना कि काम जितना बड़ा होता है, जितना ज्यादा कुर्बानी मांगता है, उतना बड़ा उसका अजर भी होता है। तो अल्लाह ताला ने फिर उनके ऊपर सकीनत नाजिल फरमाई, फअंजल अल्लाह सकीनतहू अलैह, अल्लाह ताला ने सकीनत उस पर नाजिल फरमाई। हु की जमीर किस तरफ है? इसमें मुफस्सिरीन के दोनों कौल हैं। एक ये कौल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सकीनत नाजिल फरमाई, आप पहले भी सकीनत से थे, उसके बाद और सकीनत हो गई। और एक कौल ये कि अबू बकर सिद्दीक के साथ के ऊपर सकीनत नाजिल फरमाई। देखिए ना, ये वो सहाबी हैं, इन्होंने अपनी जान की नहीं परवाह, जो इनके साथ होगा, जो वांटेड इंसान के साथ है, उसकी अपनी जान को भी तो खतरा है। दुश्मन पीछे लगा हुआ है और आप उसके साथ होके खड़े हो जाए, उसके साथ चल पड़े, तो आपने अपनी जान को तो मुश्किल में डाल दिया ना। इंतहाई इस खौफ के वक्त में उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि अबू बकर तुम मेरे गार के साथी हो और हौज पर भी मेरे साथी होगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हो उन सहाबा पे जिन्होंने मेरे नबी का साथ दिया ऐसे वक्त में जब वो तनहा थे। तो देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तो अपने नबी को उस वक्त नहीं छोड़ा जिस वो तो बिल्कुल अकेले थे, दो थे, दो बैठे हुए कार में, पर ये उन सारे उनके पीछे लगे। मैंने तो उस वक्त नहीं छोड़ा था। तुम सोचते हो कि आज तुम नहीं साथ दोगे तो पता नहीं किस कोई मिलना ही नहीं इनको, और तो आज भी उनकी मदद करते। तो ये अल्लाह ताला ने उस वक्त फिर सकीनत नाजिल की उन पे। और सकीनत क्या चीज है? सकीनत देखिए, हमें बताया गया बदर में सकीनत उतरी, हमें बताया गया कि और मवाक़े पे सकीनत उतरी। अभी हमने हुनैन के बारे में पढ़ा कि हुनैन में सकीनत उतरी, तो सकीनत क्या चीज़ होती है ये अल्लाह ही जानता है, या वो लोग जानते हैं जिनके ऊपर उतरती है। क्योंकि ये जमीनी चीज नहीं है, ये आसमान से आती है। कभी तो नींद की सूरत में एक इंसान को ऊंघ आने लगती, जैसे सहाबा फरमाते हमारे हाथों से तलवारें गिरने शुरू हो जाती, यानी जंग में है, हाथों से तलवार गिर रही है और ऊंघ सी आ रही है, और फिर उसके बाद सकीनत, सुकून आ गया। कभी बेदारी की हालत में होती है कि अल्लाह ताला सकीनत नाजिल कर देता। आज भी आर्टिफिशियल सकीनत लाने के लिए डॉक्टर किसी को बहुत कोई काम परेशानी ऐसी हुई हो तो उसको नींद की गोलियां दे देते हैं कि भाई सो ही जाओ, ये सुकून आ जाए ना उसको। तो ये सकीनत भी अल्लाह की एक मदद होती है, अल्लाह की रहमत है ये, किसी पे नाजिल कर दे सख्त परेशानी के वक्त में, मुसीबत के वक्त में, कोई ऐसा गम आए उस वक्त में, ऐसी कोई चीज हो जाए तो इंसान के दिल को करार आ जाता है, सुकून मिल जाता है। वह अय्यदहू बिजुनूद लम तरौहा, और अल्लाह ताला ने ताईद की सात लश्करों के, ऐसे लश्कर जिनको तुमने देखा नहीं, अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते उतारे थे। तो ये भी अल्लाह ताला की मदद होती है, अल्लाह गैब से मदद करता है। और मोमिनों के ऊपर भी, जब उनके लिए भी कुरान में आता है कि जब उनको कोई, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उस पे साबित कदम रहे, जमे रहे, तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर फरिश्ते उतरते, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ना गम ना करो, कोई को उनके ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती, बशारत सुना जन्नत की, तो वो उनको खुद तसल्लियां देते हैं। फिर इन अल्लाह के लश्करों को हम नहीं देख सकते। हाँ, मगर और अल्लाह के लश्कर थे वहां पे उस वक्त भी, जिनको लोगों ने देखा, जिनको काफरों ने देखा कि मकड़ी ने जाला बना दिया, उन्हें कहा इस गार में तो कभी कोई गया ही नहीं होना, तभी तो ये जाला बना। तो ये अल्लाह ताला जब किसी की मदद करना चाहता है ना, तो वहां वहां से उसके लश्कर खड़े हो जाते हैं जिनको आपने कभी सोचा भी ना हो। वजाला कलिमत लदीन कफर सुफला, और कर दिया बात को उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया नीचा। ये कैसे उनकी बात नीची हो गई, कि उन्होंने तो कहा हम पकड़ लेंगे, हम मार देंगे, हम ये काम नहीं आगे चलने देंगे, हम ये इस्लाम के कलमे को बुलंद नहीं होने देंगे, लेकिन क्या हुआ, वह कलिमतुल्लाह ही अलिया, अल्लाह का कलमा वो ही बुलंद है। कि देखो, एक वो दिन था कि जिस दिन ये खून के प्यासे थे और कहते थे हम मिटा देंगे इनको और साथ ही इस दीन को, और आज देखें इस पूरी दुनिया के कोने कोने तक ये दीन पहुंच गया। वो जिन्होंने मिटाने की कोशिश की, वो तो नीचे हो गए, उनकी बात नीचे हो गई, और अल्लाह का कलमा बुलंद हो गया। तो जो इस कलमे के साथ जुड़ेगा वो भी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि ये कलमा बुलंद है ना। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है।